اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. دوستو، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے. حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو رمضان کے آنے سے پہلے بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. وہ اہتمام اس قسم کا ہوتا تھا کہ رمضان جو کہ روزوں کا مہینہ ہے، اس روزوں کے مہینے سے پہلے ہی حضرت ختم مرتبت روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. لہذا چونکہ ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور اس عبادت کے مہینے کا استقبال اسی طریقے سے ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو مستعد کر لے، تیار کر لے کہ مجھے اس مہینے میں عبادتیں کرنی ہیں، مجھے اس مہینے میں پروردگار عالم کا قرب حاصل کرنا ہے. یہ ہی پورے کے پورے ماہ مبارک رمضان کے استقبال کا یہی طریقہ ہے کہ انسان مستعد ہو کے، تیار ہو کے ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو اور عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے. حضرت ختم مرتبت رمضان المبارک سے پہلے یہ روزہ رکھنا شروع کر دیا کرتے تھے. زیادہ تفصیل میں جائے بغیر امام سجاد علیہ السلام کی دعا صحیفہ سجادیہ میں دعا نمبر 44 ہے، جو کہ امام سجاد علیہ السلام استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے پڑھا کرتے تھے. اس کے اندر امام نے جن چیزوں کو پیش کیا ہے، وہ چیزیں اگر ہمارے فوکس میں آ جائیں، ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائیں، اس کو ہم لے کر ماہ رمضان میں شامل داخل ہوں، تو گویا ہم ماہ مبارک رمضان کا استقبال اسی انداز سے کر رہے ہیں جس طریقے سے امام سجاد علیہ السلام چاہتے ہیں اور کیا کرتے تھے. اس دعا کے اندر جو مین پوائنٹ ہیں، پہلی ایک دعا ہے اس کے اندر جو امام سجاد نے کہی ہے، اللہم وفقنا فیہ لأن نصل ارحامنا بالبر والصلاۃ، کہ پروردگار عالم اس مہینے میں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، احسان کر کے، نیکی کر کے. یہ توفیق مانگی ہے امام نے رمضان کے مہینے میں. اگر ہم اس کام کو رمضان کے مہینے میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مقدمات کو رمضان سے پہلے ایجاد کیجئے، رمضان سے پہلے فراہم کیجئے. اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اس کو فون کیجئے، رابطہ قائم کیجئے. اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معذرت طلب کیجئے. اگر کسی سے آپ ناراض ہیں رشتہ دار سے، اس کو آپ بخش دیجئے، لیکن اس کام کو رمضان سے پہلے انجام دیجئے تاکہ رمضان میں آپ صلہ رحمی کرتے ہوئے داخل ہوں. یہ اس دعا کے اندر جو امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادہ میں ارشاد فرمائی، یہ ایک نقطہ ہے. لہذا دعا کا معنی یہی ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی اور احسان کریں. دوسرا اہم پیغام جو اس دعا میں استقبال ماہ رمضان کے حوالے سے امام سجاد نے نقل کیا، بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ تَعَهَدَ جِیرَانَنَا بِالْإِفْضَالِ وَالْعَطِیَّةِ، کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ فضل اور عطا کے عہد کو پورا کریں. رمضان، اگر میں یوں کہوں، ہماری زبان میں، آج کی زبان میں کہوں کہ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے بلکہ کھلانے پلانے کا مہینہ ہے. اپنی غذاؤں میں، اپنے سحر میں، اپنے افطار میں اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں کا لحاظ کیجئے، انہیں یاد رکھیے. دیکھیے، پڑوسیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پڑوسی آپ کا غریب ہو جب ہی آپ اس کا خیال رکھیں، بلکہ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کی ایک صمیمیت ہونی چاہیے. اپنی غذاؤں میں انہیں شریک قرار دیجئے، اپنی دعاؤں میں انہیں شریک قرار دیجئے اگر وہ دعاؤں کے حقدار ہیں، اہل ہیں. آپ ان کے لیے اصلاح کیجئے، ان کے لیے خیر کو طلب کیجئے. उनके मकाम को बढ़ाइए, उनकी इज्जत को बढ़ाइए, क्योंकि इमाम ने यही तो दुआ मांगी है कि इस महीने में हमें अपने पड़ोसियों के साथ फ़ज़्ल व एहसान करने की तौफीक अता फरमा। और अगर वो पड़ोसी ज़रूरतमंद है, मोहताज है, तो उसका हक मज़ीद बढ़ जाता है और इजाफा हो जाता है उसमें। तीसरा जो इस्तकबाल के हवाले से इमाम सज्जाद ने बात कही है, वो दुआ में जुमला कहा है कि अन्नुखल्लिसा अम्वालना बित्तबेआत, के परवरदिगार आलम हमारे माल को दूसरों के हुकूक से निजात अता फरमा। ऐसा ना हो कि इंसान के पास माल हो और उसमें एक दूसरों के हुकूक मौजूद हो, किसी ने अपने रिश्तेदारों की, अपनी बहनों की मीरास खा रखी हो, किसी ने किसी का माल दबा रखा हो, किसी ने किसी के माल को चोरी करके रखा हो, और किसी ने इमाम ज़माना के हक को गस्प रखा हो, किसी ने हक़ ज़हरा को गस्प करके रखा हो, किसी ने हक़ सादात को रोक रखा हो, तो इमाम ये दुआ मांग रहे हैं कि परवरदिगार आलम इस महीने में हमारे माल को दूसरों के हुकूक से निजात अता फरमा, उन्हें आज़ादी अता फरमा। अब माह मुबारक रमज़ान में दाखिल होना चाहते हैं अजीज़ों, तो अपने माल को दूसरों के हुकूक से आज़ाद करवाइए और फिर दाखिल हो तो कहलाया जाएगा कि हमने माह मुबारक रमज़ान का इस्तकबाल किया है। और इन्हीं हुकूक में अगर कोई गरीब है, अगर कोई साइल है, अगर कोई ज़रूरतमंद है, सवाल करता है, तो उसकी मदद कीजिए। और कोशिश कीजिए दोस्तों कि अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो अपने हाथों से, अपने करीबियों की, अपने दोस्तों की, अपने अजीज़ों की, अपने रिश्तेदारों की, जिन्हें आप खुद जानते हैं, उनकी मदद कीजिए। यह आपके लिए सबसे अफजल अमल है। जो अगली बात इस इस्तकबाल के हवाले से रिवायती दुआ में आई है वो ये दुआ है कि अन नुराजा मन हाजरना व अन नुनसिफा मन ज़लमना व अन नुसल्लिमा मन आदाना, के मुकाबलेबाजी से परहेज़, दूसरों को बख्शना। यानी इमाम दे रहे हैं कि परवरदिगार आलम हमें ये तौफीक अता फरमा कि जो हमको छोड़ कर जा चुके हैं हम उनसे मुराजा करें, हम उनके पास जाएं। परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे, जो हम पर जुल्म कर रहा है हम उसके साथ इंसाफ करें। परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे, जो हमारा दुश्मन है हम उसके साथ दोस्ती से पेश आएं। यानी कि बताया जा रहा है कि लोगों के साथ मुकाबला बेमिसल ना किया जाए। उन लोगों ने जो तुमसे राबता इख्तियार किया है, जो ताल्लुक़ बनाया है, जो रिलेशन बनाया है, उन्होंने जैसा भी रिलेशन बनाया है, लेकिन तुम्हारा रिलेशन उसके साथ पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो तुमको छोड़ के जा रहा है तो तुम उसको छोड़ के जाने वालों में मत हो जाओ। अगर वो तुम पर जुल्म कर रहा है तो तुम उसके साथ इंसाफ करो। अगर वो तुम्हारे साथ दुश्मनी कर रहा है तुम इसके साथ दोस्ती करो। इस काम को माह मुबारक रमज़ान से पहले इसके मुकदमात को फराहम किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि हम अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज़ों, अपने जानने वालों के साथ वैसा ही मुकाबला कर रहे हैं जैसा वो हमारे साथ पेश आ रहे हैं। अगर ये कैफियत हो तो हमारी हैसियत एक मोमिन किसी हैसियत नहीं है, बल्कि ये कहते हुए बड़ा अजीब सा लग रहा है कि हमारी कैफियत गोया किसी मंदिर के घंटे की तरह से है, जो चाहे हमें जहाँ से बजाए। हकीकत में मोमिन ऐसा नहीं होता। मोमिन के अपने अखलाक होते हैं, अपने रवैये होते हैं, उन रवैयों की बुनियाद पर इसका रवैया और अखलाक उस्तवार होता है जो अहले बैत ने उसे सिखाए हैं। वो तरीक़े यही हैं कि जो तुम्हें छोड़कर चला जाए तुम उसके पास जाओ, जो तुमसे जनाबली जुल्म करे तुम उसके साथ इंसाफ करो, और जो तुमसे दुश्मनी करे तुम उसके साथ दोस्ती करो। और इस माह मुबारक में जो हमारे पास नुक्ता रह जाता है वह है मानवी तरबियत का, कि इमाम ने इस दुआ में इरशाद फरमाया कि नतकर्रबु इलैका फिहा मिनल आमाल अज़ाकिया बिमा ततहिरुना मिनल ज़ुनूब, कि परवरदिगार आलम इस महीने में हम तेरा तकर्रुब चाहते हैं अच्छे आमाल करके, क्योंकि तूने हमें गुनाहों से पाक कर दिया है। अगर इस महीने में जाना चाहते हैं, इस महीने में दाखिल होना चाहते हैं, तो इंसान का फोकस इस बात पर रहे, तवज्जो इस बात पर रहे कि जब इस महीने से बाहर निकलूँगा तो मुझ पर कोई गुनाह नहीं होगा। इस काम के लिए हमें तरबियत करनी पड़ेगी। रमज़ान उल मुबारक से पहले अपने आमाल का मुशाहिदा कीजिए, कुछ टास्क बनाइए, कुछ तय कीजिए कि रमज़ान जब ख़त्म होगा तो मैं अपने आप को इतनी तरबियत कर दूँगा कि गीबत नहीं करूँगा, मैं हराम नहीं खाऊँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सदाकत से पेश आऊँगा, मुझ में वफा होगी, मुझ में करम होगा, मुझ में सआदत होगी। इसकी तरबियत कीजिए और इसके लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए। और जो आखिरी चीज़ इस रिवायत में, इस दुआ में जो इस्तक़बाल माह मुबारक रमज़ान के हवाले से आ रही है, वो ये है कि वतुअसिमुना फ़ीहि मिम्मा तस्तअनिफ़ु मिनल क़ुयूब, कि एक मरतबा इंसान ने तरबियत कर ली है तो मुसम्मम इरादा करके इस रमज़ान में दाखिल हो कि जो ऐब मैंने इस रमज़ान में छोड़ दिया है, परवरदिगार आलम मैंने अपनी कोशिश कर ली है, तू मुझे तौफीक अता फरमा कि मैं अगर गीबत को छोड़ चुका हूँ तो रमज़ान के बाद गीबत जैसा गुनाह मेरी ज़िंदगी में दोबारा ना आए। परवरदिगार आलम मैंने अगर हरामखोरी को रमज़ान के महीने में तर्क किया है तो तू मुझे तौफीक अता के फरमा के रमज़ान के बाद ये हरामखोरी मेरी ज़िंदगी में ना आए। परवरदिगार आलम अगर मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं इस महीने में अपनी निगाहों को गुनाहों से आलूदा नहीं करूँ तो रमज़ान के बाद भी तू मेरी निगाहों को पाक और पाकीज़ा फरमा। इसका इरादा इंसान रमज़ान के दाखिल होने से पहले ही करे ताकि रमज़ान में उस तरीके से दाखिल हो जिस तरीके से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दाखिल होना चाहते हैं और एक मोमिन को जिस तरीके से दाखिल होने की दावत दे रहे हैं। व आखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।